वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम छठा स्कंद अध्याय संख्या 14। अध्याय का नाम है राजा चित्रकेतु का शोक। श्लोक संख्या कल महाराज जी ने 26 श्लोक तक चर्चा की थी। सत्ताईस, 28 और 29। तो श्लोक संख्या 29 बोर्ड पर है, उसको हम दोहराएंगे। अतः नृपतिं राजन् भवितैकस्त्वमात्मजा हर्षशोकप्रदस्तुभ्यम् इति ब्रह्मसुतो ययो। अथा नृपतिं राजन् भवित एकतव आत्मजा हर्षशोकप्रदत्तुभ्यम् इति ब्रह्मसुतो ययो। अथा नृपतिं राजन् भवितैकस्त्वमात्मजा हर्षशोक प्रदस्तुभ्यम् इति ब्रह्मसुतो ययो। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसी भक्ति विधान स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अथ तत्पश्चात आह कहा नृपतिम राजा ने राजन हे राजा चित्रकेतु भविता होगा एकह एक तव तुम्हारे आत्मजह पुत्र हर्ष शोक प्रसन्नता तथा दुख प्रदह प्रदान करने वाला तोभ्यम तुमको इति इस प्रकार ब्रह्मसुतः भगवान ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि ययौ चले गए। अनुवाद। तत्पश्चात ऋषि ने राजा से कहा हे राजन अब तुम्हारे एक पुत्र होगा जो हर्ष तथा शोक दोनों का कारण बनेगा। ऐसा कहकर चित्रकेतु के उत्तर की प्रतीक्षा ना करके ऋषि चले गए। तात्पर्य हर्ष शब्द का अर्थ है प्रसन्नता और शोक का दुख। जब राजा को ज्ञात हुआ कि उसके पुत्र उत्पन्न होगा तो वह परम प्रसन्न हुआ। परम प्रसन्नता के मारे वह अंगिरा ऋषि के कथन का वास्तविक अर्थ नहीं समझ पाया। उसने यह समझा कि भावी पुत्र के जन्म में निश्चय ही हर्ष होगा, किंतु उसका एकमात्र पुत्र होने से संपत्ति और साम्राज्य के गर्व से फूल कर संभव है कि वह पिता का आज्ञाकारी ना बने। किंतु राजा यह सोचकर संतुष्ट हुआ कि पहले पुत्र तो उत्पन्न हो, इससे क्या होता है कि यदि वह आज्ञाकारी नहीं हुआ। बंगाल में कहावत है कि मामा ना होने की अपेक्षा अंधा मामा ही भला है। राजा को यह विचार भाग गया कि पुत्र ना होने की अपेक्षा अविज्ञाकारी पुत्र अच्छा है। परम साधु चाणक्य पंडित का कथन है को अर्थः पुत्रेण जाते यो न विद्वान धार्मिका काणेन चक्षुषा किं वा चक्षु पीड़े व केवलम। ऐसे पुत्र से क्या लाभ जो ना तो विद्वान है ना भक्त। ऐसा पुत्र तो उस अंधी रोगग्रस्त आंख के समान है जो हमेशा दुख देती रहती है। इतने पर भी जगत कितना कलुषित हो चुका है कि मनुष्य पुत्र की कामना करता है, भले ही वो बेकार क्यों ना हो। चित्रकेतु इसी विचारधारा का पोषक था। हरे कृष्णा। आप सबका भागवतम कक्षा में हार्दिक स्वागत है। और प्रसंग चल रहा है राजा चित्रकेतु का, और आप में से कुछ भक्त प्रतिदिन नहीं आते होंगे, उनके लिए थोड़ा सा हम इस कथा को बताते हैं। इससे पहले कल भक्ति बृहद भागवत महाराज ने श्लोक संख्या 26 तक चर्चा की थी। 27 और 28 के अनुवाद पढ़ देते हैं। 27वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, महाराजा चित्रकेतु द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान ब्रह्मा के मन से उत्पन्न मानस पुत्र अंगिरा ऋषि राजा के प्रति दयालु हो उठे। अपने अत्यंत शक्तिशाली व्यक्तित्व के कारण ऋषि ने त्वष्टा को खीर का पिंडदान करके यज्ञ संपन्न किया। हे परीक्षित, अंगिरा ऋषि ने यज्ञ के अवशेष प्रसाद को चित्रकेतु की लाखों रानियों में से सबसे बड़ी तथा परम गुणवती रानी को प्रदान किया, जिसका नाम कृतद्युति था। और फिर उसके बाद आज का श्लोक। तो पिछले काफी दिनों से प्रसंग चला था वृत्रासुर इंद्र के बीच के युद्ध का। वृत्रासुर की यशस्वी मृत्यु होती है और इंद्र को वृत्रासुर का वध करने के कुछ पाप मिलते हैं। उसके बाद परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं कि भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है, इतना आसान नहीं है, तो यह कैसे संभव हुआ कि एक असुर इतना उत्तम कोटि का भक्त हो? यह संभव ही नहीं है। देवतागण भी भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, वो सत्वगुण में स्थित होते हैं, और एक असुर इतना उत्तम कोटि का भक्त, इसके बारे में व्याख्या कीजिए। तो परीक्षित महाराज का यह प्रश्न सुनकर सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हो गए। तो श्रोता को इस ढंग से सुनना चाहिए कि हम सुनते हैं साथ साथ प्रश्न उठने चाहिए। अगर प्रश्न नहीं उठ रहे हैं, इसका मतलब हम पूर्ण रूप से इतना अटेंटिव नहीं है। निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा प्रश्न था कि इतनी उत्तम कोटि के भक्त एक असुर की योनि में कैसे कोई प्राप्त कर सकता है। तो तुरंत सुखदेव गोस्वामी उनसे बहुत प्रसन्न हुए। जब वक्ता या गुरु हमसे प्रसन्न होते हैं तो वो भक्ति के गुहेतम से गुहेतम बातों को भी शिष्य को बताना पसंद करते हैं, चाहते हैं। इसी ढंग से हम देखते हैं, जब अघासुर का वध किया था और अघासुर का वध करके ग्वाल बाल जब वापस घर में आते हैं तो एक साल के बाद अपने माता पिता को बताते हैं कि अघासुर का वध हुआ। तुरंत परीक्षित महाराज ने पकड़ लिया, एक साल क्यों लगा बताने में। फिर सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए और प्रभुपाद लिखते हैं कृष्णा पुस्तक में, जब गुरु से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो गुरु बाध्य हो जाते हैं शिष्य को गुहितम से गुहितम रहस्य बताने के लिए। तो सुखदेव गोस्वामी ने प्रश्न होकर फिर बताना शुरू किया कि वृत्रासुर पिछले जन्म में राजा चित्रकेतु थे। राजा चित्रकेतु बहुत ही यशस्वी राजा थे, राजा शूरसेन के पुत्र थे और बहुत युवा थे, अच्छा स्वस्थ था, पूरे राज्य में संपन्नता थी, स्मृति थी, पृथ्वी अच्छे अच्छे खनिज पदार्थ दे रही थी, उनके जो मंत्री थे सबके सब उनके आज्ञाकारी थे और पूरे राज्य में सुख ही सुख था। पर उनको एक दुख था। क्या दुख था? उनकी संतान नहीं थी। और जब उनकी संतान नहीं थी तो उन्होंने एक विवाह किया, उससे संतान उत्पन्न हुई, दूसरा विवाह किया उससे संतान उत्पन्न हुई, तीसरा विवाह किया उससे नहीं, चौथा, पांचवां, छठा, सातवां, आठवां, नवां, दसवां, सैकड़ों, इसके बाद करते करते एक करोड़ रानियां हो गई और एक भी संतान उत्पन्न नहीं हुई। कोई कहेगा कि निश्चित रूप से राजा चित्रकेतु में ही सक्षमता नहीं होगी संतान उत्पन्न करने की, ऐसा भी नहीं था। बताया गया भागवतम में साफ साफ बताया गया है, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि चित्रकेतु में पूर्ण योग्यता थी संतान उत्पन्न करने की, फिर भी एक करोड़ रानियां होने पर भी एक संतान भी उत्पन्न नहीं हुई। तो इसको उसको बहुत शोक था, उसको केवल एक ही दुख था कि संतान क्यों नहीं उत्पन्न हो रही। और देखिए ये वास्तव में आप भौतिक जगत में भी देखें तो वास्तव में बात है, एक करोड़ रानियां होने के बाद भी एक संतान उत्पन्न नहीं हुई। और वो आसपास देखते होंगे, उनके मंत्री हैं, सैनिक हैं और आसपास उनके कर्मचारी हैं, सबकी संतान है लेकिन उनकी संतान नहीं है। और वो राजा है तो उनको चिंता थी कि आगे राज्य कौन संभालेगा, और दूसरी चिंता ये थी उनका और उनके पितरों का पिंडदान कौन करेगा, कोई पुत्री नहीं है, तो इसलिए वो बहुत शोक में रहते थे। सब कुछ होते हुए भी वो सुखी नहीं थे। तो वास्तव में ये भौतिक जगत की प्रकृति है। हमारे पास हर तरह के सुख क्यों ना हो लेकिन उसमें अगर एक भी दुख होगा तो वो दुख सारे सुखों को भुला देता है। वो दुख इतना महान बन जाता है कि हम भूल जाते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। अगर राजा चित्रकेत तो ये देखते कि अरे सब कुछ तो है। अच्छा एक रोज जो रानियां थी वो भी बहुत सुंदर थी, बताया गया उनके बहुत अच्छी अच्छी आंखें थी और बहुत सुंदर रानियां थी और सबके सब आज्ञाकारी थी, सुशील थी, सब कुछ ठीक था। तो अगर इसी में वो संतुष्ट हो जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो लेकिन एक पुत्र नहीं था, इसके कारण वो हमेशा उदास रहते थे। तो हमारे पास बहुत कुछ भी क्यों ना हो, कोई एक वस्तु ना हो वही हमें सताती रहती है, ये नहीं है। मेरे पास घर में पत्नी अच्छी है, बच्चे अच्छे हैं, बच्चे हैं लेकिन पुत्र नहीं है, बस ये सताता रहेगा। पुत्र है लेकिन काम धंधा अच्छा नहीं है, ये सताता रहेगा। या ये सब कुछ है, गाड़ी छोटी, ये सताता रहेगा। कोई ना कोई दुख तो रहेगा हर एक को, और हर कोई उसी दुख से इतना पीड़ित रहता है कि जो हमारे पास है उसको हम भूल जाते हैं। श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। यानी कि हमारे मन की ऐसी अवस्था है कि मन हमेशा कोई ना कोई कारण ढूंढता है असंतुष्ट रहने का। सब कुछ क्यों ना हो हम हमेशा शोक करते रहेंगे, ये बहुत ही जगत की प्रकृति है। राजा चित्रकेतु सब कुछ है लेकिन फिर भी शोक कर रहे हैं कि संतान नहीं है। ऐसे में उनके पास अंगिरा ऋषि आते हैं। अंगिरा ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उनके मन से उत्पन्न हुए। तो अंगिरा ऋषि को आते ही उनका बहुत अच्छा स्वागत करते हैं, उनके चरणों को धोते हैं और उनको बैठाकर उनसे पूछते हैं। तो अंगिरा ऋषि उनकी विनम्रता से और उनके सत्कार के भाव से प्रसन्न होते हैं। तो बोलते हैं तुम्हारे राज्य में सब कुछ ठीक लग रहा है लेकिन तुम्हारे चेहरे से मैं देख सकता हूं तुम्हारा चेहरा बहुत ही पीला पड़ा हुआ है, मुरझाया हुआ है, तुम प्रसन्न नहीं हो, क्या दुख है? तो चित्रकेतु ने बोला आप तो सब कुछ जानते हैं, आप बहुत बड़े तपस्वी हैं, योगी हैं, दिव्य पुरुष हैं, आप सब कुछ जानते हैं फिर क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, फिर भी मैं बता देता हूं कि मेरे पास कोई पुत्र नहीं है। तो अंगिरा ऋषि ने जब यह सुना उसके बाद उन्होंने राजा पे करुणा की। अंगिरा ऋषि ने देखा कि अभी मैं इसको बताऊंगा कि अगर पुत्र आ भी गया तो कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग कितनी ही इच्छाएं रख ले, यह ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए, अगर वो इच्छा पूरी हो जाती है, जब वो इच्छा पूरी होती है तब हमारे दुख शुरू होते हैं। भगवान ने बहुत विचित्र ढंग से, बहुत ही अद्भुत तरीके से सृष्टि की रचना की है। जब हमारी इच्छा पूरी हो तो हमें सुखी हो जाना चाहिए, लेकिन जब इच्छा पूरी होती है तभी दुख शुरू होते हैं। हम अपने जीवन में फ्लैशबैक करें, बचपन से लेकर हमने कौन कौन सी इच्छाएं की थी, और इच्छाएं पूरी भी होती होगी। जब इच्छा पूरी नहीं होती तो शोक करते रहते हैं, ये नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और जब इच्छा पूरी हो जाती है तब तो खुश हो जाना चाहिए, तब भी क्या होता है, हम दुखी रहते हैं। उसके बाद ही हम सीखते नहीं है, हम फिर से इच्छा करते रहते हैं, फिर से इच्छा करते हैं, फिर उसके लिए प्रयास करते हैं। तो इसे बोलते हैं कांक्षति शोचति, या तो कांक्षा करते रहते ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, और जो इच्छा पूरी हो जाती है उसके बाद फिर दुखी हो जाते हैं। पूरे संसार में हर व्यक्ति इस ढंग से असंतुष्ट है, हर व्यक्ति हर समय शोक में डूबा हुआ है, हर व्यक्ति। इसलिए भागवतम का संदेश प्राप्त करके हम इस शोक की अवस्था से पूरा उठ सकते हैं। कोई कह सकता है कि श्रीमद् भागवतम अमल पुराण है, तो राजा चित्रकेतु का शोक ये चर्चा करने की आवश्यकता है? पूरा अध्याय का नाम ही है राजा चित्रकेतु का शोक, और सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं जो कि बिल्कुल मृत्यु के करीब है। क्यों? इस कथा को पढ़कर हम शोक की अवस्था से ऊपर उठ सके। जिस ढंग से हम देखेंगे भक्तों की कृपा से राजा चित्रकेतु अपने शोक से ऊपर उठते हैं, तो हम भागवतम का पाठ करके, जो भागवतम में चरित्र हैं उनका जब हम श्रवण करते हैं प्रमाणिक स्रोतों से, श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्यों के आधार पर जब हम भागवतम के चरित्र को समझते हैं, तो उनके चरित्रों से हमें कुछ सिद्धांत निकालकर उसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं कोई अगर ऐसा करता है तो निश्चित रूप से उसका भगवत धाम जाना गारंटेड है। भागवतम सुनने में, भागवतम सुनना अपने आप में पुण्य कार्य, श्रवणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, लेकिन उसके बाद अगर इसको हम सुनकर इसमें से क्या सिद्धांत निकलते हैं? राजा चित्रकेतु के पास सब कुछ होते हुए भी वो शोक में है। तो अगर वो इस बात को समझ लेता कि ये सब भगवान की इच्छा है, एक करोड़ रानियों के बावजूद भी एक संतान उत्पन्न ना होना ये अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है। एक करोड़ रानियां रखना अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है और एक करोड़ रानियों के बावजूद ही एक भी संतान उत्पन्न होना ये बहुत बड़ा चमत्कार है। तो भगवान का जो भी कार्य होता है वो एक चमत्कार होता है इस सृष्टि में, और जो चमत्कार होता है वो किसके लिए होता है? हमारे सबके आनंद के लिए, ताकि हम देख सकें भगवान की सृष्टि कितनी अद्भुत है। चाहे उस चमत्कार से हमें दुख भी क्यों ना हो रहा हो, हमें पीड़ा भी क्यों ना हो रही हो, लेकिन हम भगवान की सृष्टि के चमत्कार को समझेंगे तो हमेशा आनंद में रहेंगे। शुद्ध भक्तों का ये दृष्टिकोण होता है। अब समझ लीजिए किसी के शरीर में कुछ पीड़ा है, समझ लीजिए कुछ कैंसर का रोग है। कैंसर का रोग आजकल बहुत फैलता जा रहा है ना। पहले 1970 में 80 में फिल्में भी आप बनना करते थे, किसी हीरो को ही कैंसर होता था, कैंसर का रोग आम नहीं होता था, कोई हीरो होता था उसी को कैंसर होता था, और इसी में पूरी पिक्चर बन जाती थी कि लास्ट में मालूम चला हीरो को कैंसर है, वो पिक्चर सुपरहिट हो जाती थी। मतलब कि कैंसर साधारण रोग नहीं था, और आजकल तो बहुत सब कुछ सुनने को मिल रहा है कैंसर हो गया कैंसर हो गया। तो समझ लीजिए किसी को कैंसर का रोग है जो कि बहुत पीड़ादायक रोग है, तो इस स्थिति में हम कैसे देखें कि ये भगवान की कृपा है? चलो कैंसर का रोग तो बहुत बड़ा हो गया, थोड़ा सा पीठ में ही दर्द है समझ लीजिए, किसी के टांग में ही दर्द है, सारे इलाज करा लिए, घुटने में दर्द है सारे इलाज करा लिए, कोई तो ही नहीं है ना। शायद आप पता आया था एक व्यक्ति को घुटने में दर्द था, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा लिया, एक ऑर्थोपेडिशियन के पास गया जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट था बहुत बड़े हॉस्पिटल का, उसने प्रिस्क्रिप्शन पर लिख दिया IDK डिजीज। उसने पूछा IDK क्या होता है? बोला आई डोंट नो क्यों घुटने में पेन, अब कुछ पता नहीं मुझे, आप वैक्सीन कराते रहो, मोम लगाते रहो, गर्म सगाई करते रहो, देखो कुछ हो जाए हो जाए। तो समझ लो ये पेन है, तो क्या करें? तो हमें देखना चाहिए शरीर में पेन क्यों होती है, दर्द क्यों होता है। जब हमारे शरीर में तरह तरह की नर्व्स हैं, नसें हैं, उन नसों के अंत में कुछ उसमें विकार आ जाता है जिससे पीड़ा होती है। तो ये भी भगवान का चमत्कार है कि कैसे पूरे शरीर में प्रेम से नसें निकलती हैं और नर्व्स निकलती हैं, उस नर्व्स के अंत में कुछ विकार आ जाता है जिससे कुछ सिग्नल निकलता है, उस सिग्नल से पेन आ जाती है। बड़े से बड़े टेक्नोलॉजिस्ट साइंटिस्ट जितनी मर्जी मशीनें बना ले ऐसी पेन नहीं निकाल सकते, और बड़ी बड़ी मशीनें बनाकर उस पेन को दूर भी नहीं कर सकते। तो इससे अच्छा फला क्या है कि इसको हम स्वीकार कर लें, भगवान का चमत्कार है, भगवान का चमत्कार देखें और इसमें खुश रहें, नहीं तो चित्र के दुख जरा शोक करते रहेंगे। और चित्र के दुख जरा अगर हमारी इच्छा पूरी हो भी गई तब भी शोक है। तो ये बोला कि आपको संतान उत्पन्न होगी, हर्ष शोक होगा, वो आपको हर्ष भी देगा शोक भी देगा। इसके बाद अंगिरा ऋषि तुरंत चले गए और राजा चित्रकेतु ने सुना संतान तो होगी ना, ठीक है बस मुझे यही चाहिए था। प्रभाव लिख रहे हैं मामा ना होने से अंधा मामा ही अच्छा है, कोई तो मिलेगा, ठीक है वो दुख कैसे देगा, एकमात्र पुत्र होगा, इतना बड़ा साम्राज्य होगा, जिद्दी हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, कोई बात नहीं चलता है, संतान तो हो जाएगी, ठीक है इसमें संतुष्ट। लेकिन आगे जाके देखेंगे यही पुत्र सभी रानियों में द्वेष उत्पन्न कर देगा, झगड़ा उत्पन्न कर देगा, और सब रानी बाकी रानियां उसको जहर दे देंगी और उसकी मृत्यु हो जाएगी। और तब चित्रकेतु बहुत आलाप करता है, बहुत रोते हैं, तब उसका शोक उसके बिल इस शोक से बहुत बड़ा होता है। तो अगर हमारे जीवन में कुछ पीड़ा है, कोई दुख है, तो हमें उसको भगवान का चमत्कार देखकर उसमें उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। ये एक भक्तों की दृष्टि होती है। अगर ऐसा नहीं होगा और हमें कहते रहेंगे ये नहीं है ये नहीं है, है? बताया जाता है कि इंग्लिश में कहते हैं जो बड़े बड़े आजकल के जेट एज गुरु कहते हैं हैव कॉन्शियसनेस एंड हैव नॉट कॉन्शियसनेस। हमारे पास ये चेतना होनी चाहिए कि हमारे पास क्या है, और ये चेतना होगी कि हमारे पास क्या नहीं है तो हमेशा हम शोक करते रहेंगे। अगर कोई भक्त ये देखता कि मेरे पास क्या है तो हमेशा कृतज्ञ रहेगा, अगर उसके पास पीड़ा भी है उसमें भी भगवान का चमत्कार देखेगा तो खुश रहेगा। तो ये शक्ति हमें भागवतम के संदेश से मिलती है। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंध के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में बताया गया है यस्याम वैश श्रूयमानायाम कृष्ण परम पुरुषे भक्तिर उत्पाद्यते पुंसा शोक मोह भयापहा। श्रीमद् भागवतम के संदेश को सुनने मात्र से क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, अच्छा, भगवान श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है तो उस भक्ति से क्या होता है, भक्ति उत्पादते पुंसाम शोक मोह भयापह, शोक मोह और भय की जो अग्नि है ये शांत हो जाती है। सारे के सारे जीव इस संसार में शोक मोह और भय की अग्नि में जल रहे हैं, हर कोई हर अवस्था में। हम शोक करते रहते हैं, भयभीत रहते हैं और मोह में रहते हैं, लेकिन जब भागवतम के संदेश को सुनकर कृष्ण से आसक्ति हो जाती है तो हम शोक में और भय की अग्नि को बुझा देते हैं। और ये हम भक्ति में कितना प्रगति कर रहे हैं इसको हम नाप सकते हैं कि हम कितने शोक की अवस्था में रहते हैं। प्रभुपाद कहते हैं जो शोक करता है वो शूद्र है, जो सहन करता है वो ब्राह्मण है। ब्रह्म सूत्र में एक वर्णन आता है, शुक अस्य तद अनादर श्रवणात् तद आदरणवात् शोचते ही। वर्णन आता है कि एक राजा प्रोत्रायन थे, राजा प्रोत्रायन रैविक ऋषि के पास गए। तो रैविक ऋषि के पास जब वे गए तो बहुत उदास थे, और उदास क्यों थे, क्योंकि राजा प्रोत्रायन के प्रति किसी ने कुछ अनादर पूर्वक शब्द बोल दिए थे। तो अनादर पूर्वक शब्दों को सुनकर वो बहुत कुंठित थे, बहुत दुखी थे। तो जब रैविक ऋषि ने देखा कि एक राजा आ रहे हैं और बहुत दुखी हैं, किस लिए दुखी हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ अनादर पूर्वक शब्द सुन लिए, तो राजा ने कहा, ऋषि ने कहा, रैविक ऋषि ने कहा, तुम राजा नहीं तुम शूद्र हो। इसका वर्णन पद्म पुराण में भी आता है कि तुम शूद्र हो, तुम क्षत्रिय नहीं हो, क्योंकि तुम शोक कर रहे हो। तो जो शोक करता है उसको शूद्र बताया गया है। तो अगर हम इस ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे, भागवतम के ज्ञान को सुनते हैं, तो भागवतम के ज्ञान को सुनकर हम शोक मोह और भय की अवस्था को हमें पार कर जाना चाहिए, क्योंकि भागवतम सुनने से कृष्ण के प्रति हमारी आसक्ति उत्पन्न होती है। तो अपने जीवन में हम देख सकते हैं कि कृष्ण से हमारी कितनी आसक्ति है। अगर हम यही कांक्षा सोचती और कांक्षी करते रहेंगे कि हम कितनी प्रोग्रेस, कितनी ये होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, मेरे पास ये नहीं है, काश वो सेवा मिल जाती, वो सेवा क्यों नहीं मिली, मुझे इतना आदर क्यों नहीं मिला, ये क्यों नहीं हुआ, अगर ये हमारी भावना चेतना है, इसका मतलब अभी कृष्ण से आसक्ति नहीं हुई। और हम जैसी भी अवस्था में हैं और सेवा में पूर्ण रूप से अपना हृदय दे रहे हैं, इसका मतलब हम भगवान से आसक्त होने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस कथा से हम अपने शोक की अवस्था को पार कर सकते हैं। तो अंगिरा ऋषि ने देखा कि ये राजा केवल पुत्र चाहता है, इस समय उसको और कोई आशीर्वाद कार्य नहीं करेगा, कोई नहीं, और कुछ सुनना भी नहीं चाहेगा, वो इतना आसक्त है कुछ सुनना नहीं चाहेगा। तो अंगिरा ऋषि ने सोचा क्या किया जाए, अगर मैं इसको बताऊंगा, अरे इस संसार का कोई भी वस्तु आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकता, पुत्र भी होगा तो वो भी संतुष्ट नहीं करेगा, इसमें भगवान की इच्छा को देखो। लेकिन नहीं, वो राजा इतने शोक में डूबा हुआ था, अंगिरा ऋषि ने सोचा कि इन्होंने मेरी शरण ग्रहण की है तो इनको शरण में रहने देते हैं, तो इनको एक, जिसे कहते हैं, कहा जाए एक लॉलीपॉप है ना, एक पुत्र दे देते हैं, ठीक है, और ये पुत्र इनको शिक्षा देगा, जो मेरी बात नहीं नहीं समझेंगे। कई बार कहा जाता है बहुत साधारण शब्दों में, क्या वो लातों के भूत बातों में, जब हम बहुत ज्यादा आसक्त होते हैं तो हमें कोई उपदेश कार्य नहीं करता, नहीं चाहिए चाहिए, जब तक ये नहीं मिलेगा हम संतुष्ट नहीं होंगे। तो अंगिरा ऋषि ने कहा ठीक है ले लो, लेकिन आपको हर्ष और शोक, हर्ष देगा थोड़ा सा, शोक बहुत ज्यादा देगा। उसने सुना ही नहीं, उसने सुना ही नहीं अंगिरा ऋषि का क्या मतलब है, बोला ठीक है ठीक है ठीक है दे दो, और खुश हो गए। ये हमारी स्थिति होती है। तो अंगिरा ऋषि के आचरण से हमें समझना चाहिए कि किस ढंग से प्रचारक होना चाहिए। समझ लीजिए आपकी भी यही स्थिति है। अंगिरा ऋषि कैसे गए, पीछे बताया कि अंगिरा ऋषि अपनी स्वेच्छा से राजा चित्रकेतु के पास गए। राजा चित्रकेतु उनकी शरण में नहीं गए, राजा चित्रकेतु उनको आमंत्रण नहीं दिया था। अंगिरा ऋषि बताया गया, एक बार उनके पास कुछ ज्यादा अधिक करने को नहीं था, घूमते घूमते चित्रकेतु के महल में चले गए। तो हम लोग भक्तों को भी ऐसे करना चाहिए कि हमें बाहर निकलकर संकीर्तन में निकलना चाहिए। पूरे का पूरे संसार में लोग शोक में डूबे हुए हैं, राजा चित्रकेतु की तरह, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। हम सोचते क्या है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए एग्जाम कर रहे हैं, एक बार अटेम्प्ट किया नहीं हुआ, दो बार अटेम्प्ट किया नहीं हुआ, तीन बार अटेम्प्ट किया नहीं हुआ, चार बार, पांच बार, बेचारा शोक में डूबा हुआ है। उसको ये लगता है कि किसी ढंग से मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाऊं मैं सुखी हो जाऊंगा। फिर क्या होता है, हम देखते हैं छठी बारी वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता है, खुशी हो गया, फिर उसके बाद क्या है, फिर शोक में, नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही, प्रैक्टिस नहीं चल रही, नौकरी नहीं मिल रही। उसके बाद उसको नौकरी भी मिल जाती है, फिर खुश हो गया,
مطلب تو شوق دور ہوا تھوڑا سا ہر پھر شوق بولا کیا بہت کام ہے بہت کام ہے بہت کام ہے بولا کیا چاہیے. جب اس کو یاد کرو پہلے جب آپ اتنا سنگھرش کر رہے تھے ڈگری لینے کے لیے تب بھی شوق میں تھے, ڈگری مل گئی تب بھی شوق میں ہو, نوکری نہیں تھی تب شوق میں ہو, نوکری مل گئی پھر شوق میں ہو, کیا کیا سنتوشت کرے گا آپ کو پتا نہیں. اب کیا کروں, شاید وواہ کر لوں وواہ کر لوں وواہ کر لوں سیشن کر لو وواہ, چلو اس کے بعد کیا ہوا, اب تو خوش ہو, ہاں تھوڑا سا ہنی مون اچھا, پھر اس کے بعد پھر شوق. کیا چاہیے, شاید سنتان سے کچھ ہویا, سنتان 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 آگے سنتان, اب بولو کیا ہو گیا, بہت اچھا لگ رہا چھوٹا بچہ بہت اچھا, اس کے بعد اب کیا ہوا, سنتا نہیں ہے سنتا نہیں ہے کہنا نہیں من, شوق ہی شوق. آپ دیکھیے ہر ویکتی ہر کھن شوق میں, تو ہم بھکتوں کا کیا کرتویہ اس بھاگوتم کے سندیش کو لے کے جائیں, بھاگوتم کا سندیش کیول یہی ہمیں شوق مور بھے کی اوسا سے اوپر اٹھا سکتا ہے, اس کو اپنے جیون میں بھی اتارنے کا پریاس کریں اور دوسروں کو بھی یہ سندیش دیں. تو راجا انگیرا منی نے سوچا اس کو اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی, تو ٹھیک ہے پتر دے دیتے ہیں اور اس پتر ہی اپنے پتا کو سکھائے گا. تب بعد میں انگیرا منی آتے ہیں, جب یہ پتر مر جائے گا انگیرا منی دوبارہ سے آتے ہیں اس بار ڈبل پاور کے ساتھ, ساتھ میں کس کو لے کے آتے ہیں, نارد منی جی کو. تو یہ بھکتوں کو یہ نہیں ہے کسی کو شوق میں ڈال دیا پھر بھول گئے, اس کے بعد فالو اپ کرنا چاہیے, جا کے فالو اپ کریں کہ ٹھیک ہے اس کے بعد کیا. اس کے بعد جب ویکتی ایک دم بھوتک پرکرتی کے دوارا ونمر بنا دیا جاتا ہے, اس کی اتنی پٹائی ہوتی ہے ویسے تو سنتا نہیں, بھوتک پرکرتی کے دکھوں کو پراپت کر کے وہ اپنے آپ ونمر ہو جاتا ہے, پھر وہ سننے کی استھتی میں ہوتا ہے اور پھر انگیرا منی اور نارد منی کو سندیش دیتے ہیں اور پھر سارا کا سارا سندیش وہ ہردے میں پرویش کرتا ہے. دیکھتے ہیں کسی گھر میں مرتیو ہوتی ہے تو پھر سب لوگ بڑے کہتے ہیں ہاں بتائیے کیا ہے نا, کیسے چلے گئے, ہمارے پتا جی کہاں گئے, کیا ہوا ہوگا ان کا, سب کے سب سننے کو تیار ہوتے ہیں. اور آگے پیچھے جب مندر میں آتے ہیں اور بہت اچھا بزنس چل رہا ہے اور بتاؤ آپ شریر نہیں آتنا, بیکار کی بات ہے, کیا بیکار کی بات کر رہے ہیں, سننے کو تیار ہے. لیکن جب کسی کی مرتیو دیکھتے ہیں اپنے سگے سمبندھی کی تب ہردے میں شوق اتپن ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے, پھر وہ اپنے آپ ونمر ہوتے ہیں. تو اس ڈھنگ سے انگیرا رشی نے دیکھا کہ میری بات یہ ڈائریکٹ نہیں سنے گا, اس کو اس ڈھنگ سے سمجھایا جائے. جیسے ایک بار ہز ہولینس دیوامت سوامی مہاراج ایک لیکچر میں کتھا کہانی سنا رہے تھے, آپ سب نے سنی بھی ہوگی, کہ ایسی ایک بہت ہی آسکت راجا تھا, بالکل بھوتک آسکتیوں میں. ایک سادھو ان کے راجیہ میں جاتے, سادھو کا ایک ہی ماتر کرتا ہے اس کی آسکتی کو کیسے کاٹا جائے, اب وہ سندیش تو سنے گا نہیں. تو سادھو نے اس کو دیکھ کر کہا کہ میں تمہارا بھوشیہ دیکھ سکتا ہوں راجا, اور اچھل گیا بتائیے کتنا مجھے اور ایشوریہ ملے گا, کون کون سے راجیوں کو جیتوں گا, کتنی رانیاں اور بڑھ جائیں گی. انہیں بولا نہیں بہت جلدی تمہاری مرتیو ہونے والی ہے. یہ سن کر راجا بےچارا اداس ہو گیا, بولا نہیں نہیں ایک بہت اچھی خبر ہے, مرنے کے بعد تم سورگ لوک چلے جاؤ گے. راجا اچھل پڑا آہا سورگ لوک میں, بولے وہاں بہت ایشوریہ ہیں, سومرس کا پان کرو گے, اپسرائیں ہوں گے, نتیہ دیکھو گے, بہت سندر شریر ہوگا, بہت سکھ ہوگا. راجا بہت سکھی تھا, بولے واہ واہ کیا بات سنائی آپ نے. بولے نہیں نہیں راجا ایک گڑبڑ ہے ایک گڑبڑ ہے ایک کمی ہے ایک کمی. بولے کیا, بولے اتنا سکھ تو ہوگا لیکن وہاں پر مچھر ہوں گے. راجا بولے وہاں پہ مچھر ہوں گے, ہاں مچھر تمہارے سکھ میں بادھا ڈالیں گے. راجا پھر دکھی ہو جاتے ہیں, بولے راجا نہیں 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 اس مچھروں کا بھی ایک اپائے ہے, ایک اچھی خبر یہ ہے کہ وہاں پہ مچھردانی ہے. بولے راجا بولے واہ چلو مچھردانی کے اندر آرام کروں گا. بولے راجا راجا ایک اور بری خبر ہے. بولے کیا, اس مچھردانی میں چھوٹا سا چھید ہے, وہ چھید سے مچھر گھس سکتا ہے. راجا پھر اداس ہو گیا, بولے کیا کیا جائے. پھر بہت سوچنے کے بعد منی نے بتایا ایک اپائے ہے راجا. بولے کیا, ایسا کرنا جاتے ہوئے ساتھ میں سوئی دھاگا لے جانا, اس مچھردانی کے چھید کو سی دینا. راجا نے خوب سوچا, بولے رشی ہو کر ایسی بات کرتے ہو, کوئی اپنے ساتھ سوئی دھاگا لے جا سکتا ہے, کچھ نہیں لے جا سکتا. بولے ہاں یہی بات سمجھانا چاہتا تھا, کچھ ساتھ میں نہیں لے جاؤ گے, سب یہی رہ جائے گا. تو یہ رشی گن اس ڈھنگ سے سادھوؤں کا کرتویہ ہے کہ کس ڈھنگ سے کرشنا کانشیسنس کو پیکیج کیا جائے. یہ ایک پریچر کا ایکسپرٹیز ہے, اس کی کشلتا ہے. یہ نہیں کہ جو ہم نے سنا جیسے سنا دھر دھر ویسے بول دیا. پروپاد کہتے ہیں کہ آپ سنیے, اس کا منن کیجئے, ایسیمیلیٹ کیجئے کیا ہے اور اس کو اپنے طریقے سے شوتاؤں کی ضرورتوں کو سمجھتے ہو اس کو سمجھانا چاہیے. ادیشیہ یہ ہے کہ اس کی بھوتک آسکتی سماپت ہو اور کرشن کے پرتی آسکتی بڑھے. تو انگیرا منی نے یہی کیا کہ ایسے تو یہ سمجھیں گے نہیں, ہر شوق کہہ کے ترنت چلے گئے.
اب بھی بتاؤں گا شوق کیسے سمجھ میں نہیں آئے گا. ترنت نکل گئے اور اس کے بعد پتر کی جو اتپتی ہوگی تو پتر کی اتپتی سے اپنے آپ وہ اس سندیش کو پراپت کر لیں گے. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ نارد منی نے بھی جیسے چوتھے اسکندے راجا پراچین بھری کا ورن آتا ہے, تو نارد منی نے راجا پراچین بھری کے پاس گئے, دیکھا طرح طرح کے یگ کر رہے ہیں, پشوؤں کی ہتیا کر رہے ہیں, یہ بات کو سمجھیں گے نہیں. تو نارد منی نے ایک روپک چتر دیا پورنجن کا, ایک پورنجن تھا, ایک راجا تھا جو کہ بہت آسکت تھا, اس کی ایسی رانی تھی. تو ایسا ورنن کیا جو کہ بالکل راجا پراچین بھری کی کتھا تھی, اس کو سن کر وہ سمجھ گئے اور ان کے جیون میں آناسکتی آئی. اسی ڈنگ سے یہ آتی راجا تھے, ایک ہزار ورشوں تک دیویانی کے ساتھ وہ بھوگ کرتے رہے, اپنے پتر پورو کے ساتھ انہوں نے یوا اوستھا کو ایکسچینج بھی کر لیا, ان کو بڑھاپا دے دیا اور اپنے پتر سے یومن لے لیا. اس کے بعد وہ سنتوشت نہیں تھے, اس کے بعد نارائن منی وہاں پر گئے اور ایک بکرے کی کتھا سنائی, ایک بکرا کیسے کام واسناؤں سے پیڑت ہے اور کیسے اس بکری کے ساتھ وہ بار بار یون سمبند کرتا ہے لیکن پھر بھی سنتوشت نہیں ہے. تو ریاتی راجا کو سن کر لگا ہاں یہ تو میری کتھا ہے, تو یہ سن کر ان کے اندر ویراگیہ اتپن ہوا. تو ہمیں دیکھنا ہے کس ڈھنگ سے ہم نے جو شوتا ہے جو ہمارے سامنے ویکتی ہے اس کو کیسے یہ سندیش دینا ہے. اگر کوئی ویکتی بہت زیادہ پیڑا میں ہے تو وہ سن نہیں سکتا, یا بہت زیادہ سکھی ہے تبھی وہ گرہن نہیں کر سکتا. جیسے کہ ہرن کشپو جب تپسیا کرنے گئے تو ان کی پتنی کیادو کو اندر اپہرن کر کے لے جا رہے تھے, اس سمے کیادو کے گھر میں پرہلاد مہاراج تھے. تو نارد منی بیچ میں ملے اور نارد منی بولا نہیں نہیں ان کے گھر میں ایک بہت مہا بھگوت ہے. تو وہ نارد منی کیادو ماتا کو اپنے آشرم میں لے گئے اور پرہلاد مہاراج کو جو کہ ان کے گھر میں تھے ان کو انہوں نے پورے بھاگوتم کا سندیش سنایا. بھاگوتم کا سندیش پرہلاد نے ماں کے گھر میں سنا, ماں نے بھی سنا, لیکن ماں کے جیون میں کوئی پرورتن نہیں ہوا. کیوں؟ وہ ہمیشہ چنتت تھی میرے پتی کب آئیں گے, کیا ہوگا, کیسے ہوگا, وہ سن نہیں پائی. لیکن پرہلاد مہاراج پورن روپ سے آشرت تھے, انہوں نے سندیش کو سنا. تو جب ہم بہت زیادہ بھوتک آسکتیوں میں لپت ہوتے ہیں تو ہم سندیش کو اور جو آدیش ہوتے ہیں ان کو صحیح ڈھنگ سے سن نہیں پاتے. اور انگیرا رشی نے اس ڈھنگ سے کہہ کر وہ ترنت وہاں سے چلے گئے. اس کے بعد شیلا پربھوپاد یہاں تاتپر میں بتا رہے ہیں کہ پتر کیسا ہونا چاہیے. اب چتر کے تو مہاراج کہہ رہے تھے جیسا بھی پتر ہو جائے کوئی دقت نہیں ہے, پتر تو ہو کم سے کم. لیکن چاناکیہ منی کہتے ہیں کو ارتھا پترین جاتے نا جو نہ ودوان دھارمکا کاڑے نہ چکشو کم وا چکشو پیڑے و کیولم. بولے کو ارتھ پترین جاتے نا, ایسے پتر کو جنم دینے کا ارتھ ہی کیا ہے, کو ارتھ کیا فائدہ اس کا. جو نہ ودوان دھارمکا, جو ودوان بھی نہ ہو اور دھارمک بھی نہ ہو, ایسے پتر کو جنم دینے کا کیا فائدہ جو بھکت بھی نہ بنے اور ودوان بھی نہ ہو. ودوان کا ارتھ یہ نہیں ہے بہت بڑا کمپیوٹر انجینئر بن گیا, بڑے اچھے انسٹیٹیوٹ سے اس نے ایم بی اے کر لی, بڑے ہمارا بیٹا بہت پڑھا لکھا ہے ودوان ہے. ودوان کا ارتھ یہ ہے جو کہ شریر اور آتما کے بھید کو جانتا ہو. آتما کیا ہے, شریر کیا ہے, جو وہ جانتا ہو کہ شریر آتما نہیں ہے اور آتما شریر نہیں ہے وہ ودوان ہے. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ آتما شریر ہے اور شریر آتما ہے, لیکن جو ودوان ویکتی ہے شریر اور آتما کے بھید کو جانتا ہوگا. تو ایسے پتر کو جنم دینے کا کیا لابھ جو اپنے آپ کو شریر مانتا ہو, اور ایسے پتر کو جنم دینے کا کیا لابھ جو کہ بھگوان کی بھکتی میں نہ جڑے. کیا نقصان ہوگا, ہے کوئی ایسا؟ برا مت مانے کسی ماتا پتا کے کوئی ایسا پتر سوچ کے پیدا کرتے ہیں ہم کہ ہمیں ایک ایسا پتر چاہیے جو بہت بڑا بھکت ہو یا بہت بڑا ودوان ہو, خوب پرچار کرے. نہیں, کیا بولتے ہیں ایسے پتر سے کیا ہوتا ہے, آپ سب اپنے ویکتیگت انوبھو سے اس کو انوبھو کرنے کا پریاس کیجیے. کیا ہے, کاڑین چکشوشا کی وا چکشو پیڑے و کیولم. ایسا پتر اس اندھی روگ رست آنکھ کے سمان ہے جو ہمیشہ دکھ دیتی رہتی ہے. ایسے پتر سے کوئی لابھ نہیں ہے, جو بھکت بھی نہ ہو اور ودوان بھی نہ ہو وہ ہمیشہ کیول ہمیں دکھ ہی دے گا. راجا چتر کیتو نے انگیرا منی سے یہ نہیں مانگا وردان کوئی ایسا پتر دیجئے جو بھگوان کا بھکت ہو, ایسا پتر دیجئے جو میرے پتروں کا ادھار کر دے. پربھوپاد یہاں کہہ رہے ہیں کہ اتنے پر بھی جگت کتنا کلوشت ہو چکا ہے, ये जगत इतना पॉल्यूटेड, इतना कलुषित हो चुका है कि मनुष्य पुत्र की कामना करता है भले ही बेकार क्यों ना हो। पुत्र चाहिए बेकार ही क्यों ना हो, किसी काम का ना हो, कार वाला हो लेकिन बेकार हो, कार वाला चाहिए पुत्र हमें। नहीं, कार वाला पुत्र वास्तव में बेकार है अगर वो भक्त नहीं है और विद्वान नहीं है। अगर हमारी कोई ऐसी भौतिक इच्छा है भी, कोई अच्छी पत्नी चाहता है, अच्छा पति चाहता है या संतान चाहता है, तो इस इच्छा को भी हम भगवान की सेवा में उसको कैसे हम डाउटेल, डाउटेल का क्या अर्थ हुआ, उसको हम कैसे उसको हम उसको एकाकार कर सकते हैं, कि उस इच्छा को भी हम भगवान की इच्छा से एकाकार कर सकते हैं। जब तक हम अपनी इच्छा रखेंगे, वो इच्छा रखना, अपनी इच्छा अगर भगवान की इच्छा से एकाकार नहीं है, अलग है, तो भौतिक इच्छा कहलाती है और भौतिक इच्छा अज्ञानता का लक्षण है। तो अगर कोई ऐसी इच्छा है भी तो इसको भगवान की इच्छा से कैसे एकाकार कर सकते हैं, ये हम देखते हैं भागवत के तीसरे स्कंद में कर्दम मुनि के प्रसंग में। कर्दम मुनि प्रजापति हैं और कर्दम मुनि एक पत्नी की इच्छा रखते हैं जिससे वो संतान की उत्पत्ति कर सके, और इस पत्नी की इच्छा रखने के लिए एक अच्छी योग्य पत्नी चाहिए। उन्होंने खूब तपस्या की, इतनी तपस्या की कि स्वयं भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए, और कर्दम मुनि की इस तपस्या को देखकर करुणावश भगवान विष्णु की आंखों से आंसू बहे, और वो आंसू से बहकर एक सरोवर बना जिसको बिंदु सरोवर कहते हैं। इतनी बड़ी तपस्या की, और फिर भगवान उनके लिए मैच मेकर बने कि इसके लिए कौन सी पत्नी ढूंढूं। फिर भगवान ने बोला स्वयं वो मनु की पुत्री होगी, देवभूति, वो आपके लिए योग्य होगी, तो उनका विवाह उससे होगा और बहुत शीघ्र स्वयं वो मनु तुम्हारे पास आएंगे। तो देखते हैं उनकी इच्छा थी, लेकिन वो देवभूति को या एक पत्नी अपनी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं चाहते थे। भागवतम के तीसरे स्कंद के बाईसवें श्लोक के अध्याय में, बाईसवें अध्याय के 19वें श्लोक के तात्पर्य में शीला प्रभुत आते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए। कर्दम मुनि ऐसी संतान उत्पन्न करना चाहते थे जो श्री भगवान की एक किरण हो। मनुष्य को चाहिए ऐसी संतान उत्पन्न करे जो भगवान विष्णु की सेवा कर सके, अन्यथा कोई संतान ना जने। संतान की इच्छा कब रखनी चाहिए? जो भगवान विष्णु की सेवा करे। उत्तम पिता के दो प्रकार की संतानें उत्पन्न होती हैं। जो श्रेष्ठ श्रेणी के पिता होते हैं उनकी दो प्रकार की संतानें होती हैं। एक तो वे जो कृष्ण भक्ति में प्रशिक्षित हो, जिससे उसे जीवन में माया के बंधन से मुक्त हो सके, और दूसरी जो श्री भगवान की किरण होती है जो विश्व भर को जीवन के परम लक्ष्य की शिक्षा देती है। यानी संतान उत्पन्न करने के केवल दो कारण होने चाहिए, कि एक विष्णु की रे, विष्णु की किरण आए जो कि इस पूरे संसार में लोगों का उद्धार कर सके, और दूसरा माता पिता को इतना प्रशिक्षण होने चाहिए, इतने सुशिक्षित और प्रशिक्षित होने चाहिए कि जो संतान उत्पन्न कर रहे हैं उसको ऐसा प्रशिक्षण वो देंगे कि दोबारा उसको गर्भवास ना करना पड़े, किसी मां के घर में प्रवेश ना करना पड़े और भगवत धाम वापिस जा सके। प्रभुपाद कहते हैं अगर किसी माता पिता में ये योग्यता नहीं है तो उन्हें संतान उत्पन्न करने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा वो आपके लिए दुख का कारण बनेगी, पीड़ा देगी। आज पूरे संसार में लोग दुखी क्यों हैं? यही कारण है, किसी को पता ही नहीं। ये जो इस प्रकार की संतान उत्पन्न करना बिना संस्कारों के वर्ण संकर उत्पन्न करने के समान है, और वर्ण संकर उत्पन्न करना इस पूरे समाज में सबसे बड़ी हिंसा है। हर व्यक्ति असंतुष्ट है, और असंतुष्ट जब हर व्यक्ति होगा तो समाज में शांति कैसे रह सकती है? अगर हम अंदर से खिन्न हैं, कुंठित हैं, तो दूसरे से लड़ाई झगड़ा करेंगे, और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से घर के अंदर झगड़े, एक घर का दूसरे घर से, शहरों शहरों का, राज्य राज्य का, देश देश का, क्योंकि हर व्यक्ति अंदर से असंतुष्ट है। अगर व्यक्ति अंदर से असंतुष्ट होता है तो आजकल के साइंटिस्ट क्या सोच रहे हैं कि शायद इसलिए असंतुष्ट है क्योंकि इसका कंप्यूटर बहुत बड़ा है, थोड़ा छोटा कर दें। एक ही सब कुछ पाम टॉप हो जाए या फिंगर टॉप हो जाए या फिंगर टिप हो जाए, एक चिप में इसका सब कुछ खबर आ जाए, یا اس کے موبائل فون میں ابھی تک انٹرنیٹ کی ویوستھا نہیں ہے اس لیے شاید دکھی ہے. تو ایسا ہی سب کچھ دے دیں. تو یہ ساری کی ساری سویدھائیں دے کر وہ سوچ رہے ہیں ان کے ہردے کا جو اسنتوش ہے وہ چلا جائے گا. ہم دیکھ سکتے ہیں ٹیکنالوجی نے کتنی ترقی کر لی, ہمارا اسنتوش بھی بڑھتا جا رہا ہے. کارن یہ ہے ہم سنتانوں کی اتپتی ہو رہی ہے لیکن کوئی سوچ نہیں رہا کس طرح کی سنتان چاہیے. کیا آپ میں سے برا مت مانیے, ہمارے یہاں پر سنستا سے جڑے ہوئے دکشت بھکت ہیں, ان کے جیون کا بھی یہ لکش نہیں ہے کہ ان کی سنتان اچھی بھکت بنے. ان سے پوچھا جائے کیا چاہتے ہیں آپ کی سنتان, بولے کسی ڈھنگ سے انجینئرنگ کالج میں ایڈمیشن مل جائے. ایسے دکشت بھکت ہیں جو کہ بہت خوش ہوتے ہیں, بولے بھگوان کی کرپا ہو گئی, بولے بہت ہی بڑے پبلک اسکول میں ایڈمیشن ہو گیا بچے کا, بچہ ہمارا سیٹل ہو گیا. ابھی تک یہ اچھا ہے, پربھوپاد کے اتنے پروچن گرنتھ پڑھنے کے بعد بھی وہ اپنے سنتان کے لیے کوئی ایسا سپنا نہیں دیکھتے کہ وہ اچھے بھکت بنے. وہ دیکھتے ہیں بھوتک دشٹی سے سیٹل ہو جائیں, ساتھ میں تھوڑی بہت مالا کر لے تو اچھا ہے. پہلی پرائرٹی یہ ہے کہ اس کا کیریئر بن جائے, اس کے بعد دھیرے تھوڑی بہت بھکتی کر لے تو اچھا ہے, بہت بڑھیا ہے, اس سے بڑے اور کیا چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہے, وہ سنتان ہمارے دکھ کا کارن بنے گی, پیڑا, ایسی پیڑا جیسے اندھی آنکھ ہوتی ہے وہ ہمیں پیڑا دیتی ہے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے. آج کل زیادہ چتر گدو میں کم سے کم اتنا گیان تو تھا کہ وہ اس لیے سنتان مانگ رہے تھے کہ مرتیو کے بعد پتروں کا ادھار ہوگا, ان کو پنڈ دان کریں گے. آج کل کی سنتان تو اتنی ایوگیا ہے, جیتے جیتے ماتا پتا کو پانی نہیں دیتے, بعد میں کون سا پنڈ دان کرے گا, مرنے کے بعد کون پنڈ دان کرے گا. وہ جی رہے ہوتے تب کچھ نہیں کھلاتے پلاتے, بوڑھے ہوتے باہر نکال دیتے ہیں, کیونکہ بچپن سے انہوں نے کیا دیکھا ہے, ماتا پتا کس بات پہ لڑائی کر رہے ہیں, پیسہ, پیسے کے اوپر. وہ سمجھ جاتا ہے کہ پیسہ کمانا ہے جیون کی سب سے بڑی پرائیورٹی ہے, اور جیسے ہی پیسہ آئے گا اس کے لیے ماتا پتا کوئی مہتو نہیں رہے گا, وہ گھر سے باہر نکال دے گا. پھر وہ سوچے مرتیو کے بعد کوئی پنڈ دان کرے, ہمارا بھی اور پتروں کا بھی, پتروں کو اس نے کیا دیکھا, وہ تو وشواس ہی نہیں کرتا کہ مرتیو کے بعد جیون ہوتا ہے. تو کیا ہے سنتان, آج کل کی سنتانیں ہرش شوق نہیں ہیں, ہارش شوق ہیں, ہارش شوق. ایک تو اتنا ہارش بولتے ہیں, چھوٹا سا بچہ ماتا پتا کو پلٹ کے جواب دیتا ہے, ماتا پتا حیران ہو جاتے ہیں کہاں سے سیکھ کے آیا, آپ نے نہیں سکھایا. ہارش اور شوق ایک کے بعد ان کو شوق دیتا ہے. پی ٹی اے میٹنگ ہوتی ہے, پیرنٹ ٹیچر میں بتایا کہ بیٹے آپ کے بچے نے یہ کر دیا, پانچویں کلاس کا بچہ ہے سگریٹ پیتا ہے, ہاں شوق, چھٹی کلاس میں ہے پورنوگرافی دیکھتا ہے, ہاں کیا ہوگا, ایسا ہی ہوگا. کیونکہ سنتان کی اتپتی بنا سنسکاروں کے, اور اس کے بعد اس کا پالن پوشن بھی بنا سنسکاروں کے, کیول ایک ہی ادیشیہ ہے کہ وہ دھن کمانا سیکھ جائے. ہمارا پروپا جی کے آندولن سے جڑنے سے فائدہ ہی کیا ہوا اگر ہم اپنی مانسکتا کو بدل نہیں رہے ہیں. اتنا ڈر ہے ہمیں کہ ہم پتہ نہیں کیا ہو جائیں گے سماج میں. سوچیے اس بات کو, یہ کیول پروپا کے پرپٹ اس لیے نہیں ہے, پروپا پرپٹ ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں سنتان اتپن تب کرو دو اچھائیں ہوں. کون کون سی اچھا ہو, کہ ایسی سنتان آئے جو کہ پورے سماج میں کرشن کرشن کرشنا بھانت کا پرچار کرے. جیسے بھکتی نو ٹھاکر جی نے بولا کہ میں اکیلا سنگھرش نہیں کر سکتا, اپنی ایک کرن بھیجو, تو بملا پرساد بھکتی سنان سوری ٹھاکر مہاراج پرکٹ ہوئے. یا پھر ایسی سنتان دو ہم اپنے آپ کو اتنا یوگیہ بنائیں کہ کوئی بھی پر جیو آئے ہم اس کا ادھار کر سکے. اسی دو پرستھتیوں کے علاوہ ہمیں پربھات کہتے ہیں سنتان اتپن نہ ہی کرو. تو اگر ہم پہلے کی سنتان اتپن ہو چکی ہے تو اب کیا کریں, کوئی بات نہیں, ابھی بھی ہم بیسٹ یوز آف بیڈ بارگین پربھات کہتے ہیں, اس کا سب سے اچھا پریوگ کریں کہ اس کو ہم بھکتی میں آنے سے روکے نہ. ماتا پتا آتے ہیں بولتے ہیں ہمارے بیٹے کو کسی ڈھنگ سے جوڑ لیجئے, بری عادتوں میں پھنسا ہوا ہے, اس کو جوڑ لیتے ہیں. پہلے شوق کر رہے ہوتے ہیں کہ سنتا نہیں ہے, اس کو بھکتی میں جوڑ لیتے ہیں. چھ مہینے بعد پھر سے آتے ہیں, بہت زیادہ جوڑ گیا ہے, پھر سے شوق کر رہے ہیں. یہ ہم پریکٹیکلی بتا رہے ہیں آپ کو, پریکٹیکلی بتا رہے ہیں. ہمیں اتنا دکھ ہوتا ہے کہ کتنے ابھاگیشالی ہوا, کتنے ہی ایسے ماتا پتا کے ضدی ویوہار سے بچہ ان کا نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ آپ چاہتے کیا ہو مجھ سے, کیا چاہتے ہو. پہلے آپ کے کہنے سے ہی میں جڑا, اب جڑ گیا بولے آپ ہٹے آؤ, کیا چاہتے کیا ہوگا. بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں, ان کا نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے.
माता पिता को यह डर होता है यहां आकर साधु ना बन जाए, ये वस्त्र ना डाल दे। गारंटी देते हैं हमारा उद्देश्य, जीवन का लक्ष्य बच्चों को ये वस्त्र पहनाना नहीं है। हमारे जीवन का उद्देश्य, हमारा उद्देश्य है कि कोई भी जीव आत्मा यहां पर आता है वो कृष्ण भक्ति स्वीकार करे, चाहे वो घर में रहे कहीं भी रहे, भक्ति करे, भक्ति का प्रचार करे। लेकिन नहीं, डर है, डर तो ये बहुत दुखमय स्थिति है। आप सब लोग जुड़े हैं, माला करते हैं, तो आप सबको अपने बच्चों को प्रशिक्षण देना चाहिए। और बच्चे सबसे अच्छा प्रशिक्षण ग्रहण करते हैं कि घर में माता पिता का व्यवहार कैसा है, माता पिता के अपने जीवन में कृष्ण भक्ति की कितनी प्राथमिकता है, वो सब देखते हैं। बच्चे केवल बातों से नहीं समझते, वो सब जानते हैं कि हमारा आचरण कैसा है। अच्छे आचरण को देखते हैं कि हाँ उनके जीवन में कितनी प्राथमिकता है भक्ति की, उसके हिसाब से वो भक्ति को स्वीकार करेंगे। और पूरा प्रोत्साहन हमें बढ़ाना चाहिए कि वो भक्ति में जुड़े और हम सब मिलकर आगे अगली जनरेशन को ठीक कर सकते हैं, अन्यथा बहुत पीड़ा देंगे, बहुत पीड़ा देगी। चित्रकेतु तो बहुत सौभाग्यशाली थे, इनको अंगिरा ऋषि और नारद मुनि जैसे भक्तों का संग प्राप्त हो गया और चित्रकेतु ने सारी सुनकर उनके आदेशों का पालन किया। हम देखते हैं चित्रकेतु को नारद मुनि मंत्र देंगे, उस मंत्र का उच्चारण करेंगे, एक सप्ताह के अंदर ही उनको भगवान शंकरशन के दर्शन हो जाते हैं। ऐसी अच्छी भक्ति वो करते हैं। तो हम लोग शायद इतने सौभाग्यशाली ना हो, हमारे पास प्रभुपाद जी के तात्पर्य हैं, हमारे पास चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन है, प्रभुपाद जी के अनुयायी भक्त हैं, इतना सब कुछ हमारे पास है, जिसका हम सही ढंग से उपयोग करें, अपने जीवन में उतारें, उसका खूब प्रचार करें और आगे आने वाली जो पीढ़ी है इसको हम ये ज्ञान दें और अपने जीवन में भी हम इस ढंग से डालें कि हम छोटी छोटी बातों को लेकर शोक करते रहते हैं, शोक की अवस्था में डूबे रहते हैं। तो शोक की अवस्था में डूबे रहने से भक्ति नहीं होगी। हम शोक की अवस्था में डूब कर किसी की सिंपैथी जनरेट नहीं कर सकते। हम सोचेंगे हम बहुत दुखी हैं, शोक में डूबे हुए हैं, शायद कृष्ण का हृदय पिघल जाए। नहीं, कृष्ण का हृदय तब पिघलेगा जब ऐसे शोक में अवस्था में भी हम माला कर रहे होंगे उत्साहपूर्वक, ऐसी शोक में अवस्था में भी हम प्रचार कर रहे होंगे उत्साहपूर्वक। हमें शोक ही नहीं होगा, जितने बड़े से बड़ी पीड़ा भी होगी, शरीर में पीड़ा होगी, आसपास के रिश्तेदार हमें दुख दे रहे हैं, पड़ोसी भी दुख दे रहे हैं, इन सब अवस्थाओं में भी अगर एक भक्त उत्साहित होकर सेवा में लगा हुआ है तो इससे कृष्ण का हृदय पिघलता है। जैसे कि शिला प्रभुपाद इतने विपरीत परिस्थितियों में भी लगे रहे, प्रभुपाद शोक में नहीं चले गए। प्रभुपाद ने भगवत गीता लिखी, उनके नौकर ने बेच दी, उस समय उनके पास कोई सॉफ्ट कॉपी भी नहीं थी, कंप्यूटर में कॉपी नहीं थी, लिखी 1000 पेज लिखे और नौकर ने रद्दी में बेच दिए, प्रभुपाद ने शोक नहीं किया, दोबारा से लिखे। प्रभुपाद अमेरिका में गए, एक हिप्पी पर पूरा विश्वास था कि एक अच्छा भक्त बन जाएगा, उन्होंने अपने गुरु भाई को लिख भी दिया, एक व्यक्ति मिल गया है जो मेरे संदेश को सुन रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है वो भक्त बन जाएगा। वापिस आते हैं तो वो हिप्पी ग्रुप पागल हुआ पड़ा है, प्रभुपाद पे आक्रमण कर उनका सामान बाहर फेंक दिया। 1:30 बजे प्रभुपाद न्यूयॉर्क में बिल्कुल बाहर सड़क पर खड़े हैं अकेले। प्रभुपाद ने शोक नहीं किया, दोबारा से प्रयास किया। हम अपने उत्साह से भगवान की कृपा को आकर्षित कर सकते हैं, शोक की अवस्था में डूबकर हम कुछ प्राप्त नहीं करते हैं बल्कि तमोगुण में चले जाते हैं। तो कैसे भी परिस्थितियां क्यों ना हो, हमें सबको भगवान का चमत्कार के रूप में देना चाहिए। चमत्कार है, 1 करोड़ रानियां और 1 संतान भी उत्पन्न नहीं हुई, थोड़ी सी बुद्धि का उपयोग करते हैं, भगवान की इच्छा है। इसलिए श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में बताया गया है कि हमें प्रयास क्या करने चाहिए, भौतिक परिस्थितियों को बदलने का प्रयास ना करके। नारद मुनि व्यासदेव जी को बताते हैं, तस्यैव हेतु प्रत्येत कोविदो ना लभ्यते यद् ब्रह्मताम उपरि यदा तल्लभ्यते दुखवाद अन्यता सुखम कालेन सर्वत्र गभीर रहसा। इसका अर्थ यह है, जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान है और बहुत ही दर्शन में रुचि रखते हैं, फिलोसफिकली इंक्लाइंड है, उनको किसके लिए प्रयास करना चाहिए, वही उसके लिए प्रयास करना चाहिए जो कि इस पूरे भौतिक ब्रह्मांड में ऊपर के ग्रह से नीचे के ग्रह तक भ्रमण करने पर भी प्राप्त ना हो। यानी कि इस संसार की किसी भी वस्तु के लिए हमें प्रयास नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस संसार की जो भी वस्तु मिलनी है सुख या दुख के रूप में, वो हमारे पूर्व जन्म कर्मों के अनुसार मिल ही जाएगी, उसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। प्रयास किसके लिए करना है? जो इस संसार की वस्तु ही नहीं है, यानी कि कृष्ण भावना अमृत। तो संसार में जैसे मर्जी परिस्थितियां क्यों ना हो, सुख और दुख, हर्ष और शोक आता रहेगा। इस द्वंद के जगत में नहीं फंसना। हम लोग क्या होता है, कैसे देखिए उदाहरण देते हैं, किसी के घर में मृत्यु होती है, भक्तों को बुलाते हैं, तो मृत्यु के समय भक्त लोग कौन से मंत्र का उच्चारण करते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मृत्यु से शोक से संतप्त परिवार है, भक्तों जाकर कीर्तन करते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगा। किसी घर में बच्चा उत्पन्न होता है, विवाह हुआ, फिर भक्तों को बुलाते हैं, आप कौन सा मंत्र बोलते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। साफ मालूम चलता है इससे, चाहे सुख हो दुख हो एक ही मंत्र है। इस मंत्र का उच्चारण हमेशा करते रहेंगे, द्वंद की अवस्था से ऊपर हो जाएंगे। प्रैक्टिकली हम देख सकते हैं, ऐसा तो है नहीं जब किसी की मृत्यु होती है तो कुछ अलग मंत्र हम बोलते हैं कि उस मंत्र से कुछ अलग प्रभाव होगा। सुख की अवस्था में एक अलग मंत्र है, जैसे फिल्मों में होते हैं हैप्पी सॉन्ग है, सैड सॉन्ग है, ऐसा तो है नहीं। हमारा तो एक ही गाना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बस तो जितना ध्यान पूर्वक जितना उत्साह पूर्वक इसका जप करेंगे, हम द्वंद की अवस्था से ऊपर हो जाएंगे और हर शोक में नहीं रहेंगे, हमेशा आनंद में रहेंगे। हरे कृष्णा। इसे कोई प्रश्न है या टिप्पणी है?
भगवत प्रभु जी, मतलब कई प्रकार के दो प्रश्न है। पहला प्रश्न है, जैसे मुझे भी आपने काफी पूरे प्रवचन में जो है जब मेन फोकस पे है, जैसे कि पेरेंट्स से कर्तव्य पे रहा और संस्कार पे काफी जोर दिया आपने, तो एक ये भी धारणा है मतलब भक्तों के समाज में कि कलयुग में जो है कोई संस्कार व्यवस्था चलता नहीं है, तो एक बार से हरे कृष्ण महामंत्र होता है, अगर हम माला कर रहे हैं तो किसी संस्कार की जरूरत नहीं है। यदि भी वो भक्त, बड़े विचित्र बात है, वो भक्त जो है दीक्षा संस्कार को बहुत महत्व देते हैं, विवाह संस्कार को बहुत महत्व देते हैं, अंत्येष्टि संस्कार को बहुत महत्व देते हैं, पर समझा वो गर्भाधान संस्कार जो है वो जरूरत नहीं है, नामकरण संस्कार जरूरत नहीं है, कई जो संस्कार कुछ संस्कार जो है बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ संस्कार की जरूरत नहीं। तो ऐसे केस में जो है ऐसे भक्तों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
अलग अलग संस्कार बताए गए हैं, मुख्यतः 10 तरह के संस्कार हैं, और अब निश्चित रूप से इस कलयुग में हर प्रकार के संस्कार को हम पूर्ण रूप से उसका पालन भी नहीं कर पाएंगे, और विवाह संस्कार अति आवश्यक है, अंत्येष्टि संस्कार भी होना आवश्यक है, दीक्षा संस्कार होना भी आवश्यक है, और प्रभुपाद ने गर्भाधान संस्कार पर बहुत जोर दिया है कि संतान और पत्नी से करने से पहले पति और पत्नी को कम से कम 50 माला हरे कृष्ण महामंत्र करने चाहिए, और फिर मनन करना चाहिए किस प्रकार की जीवात्मा को वो शरीर देना चाहते हैं, जिस तरह की जिस चेतना में किस तरह की चेतना की जीवात्मा को शरण देना चाहते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते रहे। और जब गर्भाधान संस्कार है इसके लिए सभी वैष्णवों से वो आशीर्वाद मांगते हैं, इट्स नॉट अ सीक्रेट। पति और पत्नी आपस में मिल रहे हैं, ये कोई उनका पर्सनल अफेयर नहीं है, गुरु को गुरु से आज्ञा लेकर सभी वैष्णवों से आशीर्वाद की याचना करते हुए, कृपा की याचना करते हुए कि सही चेतना में वो संस्कार कर सकें और सही चेतना की जीवात्मा को आकर्षित कर सकें, ये गर्भाधान संस्कार है, इस पर प्रभुपाद जी ने बहुत जोर दिया। और इसके बाद नामकरण संस्कार इत्यादि जो है इसमें श्रील प्रभुपाद जी ने इतना जोर नहीं दिया, लेकिन फिर भी हमें भक्तों को तो अवसर ढूंढने चाहिए कि कब वैष्णवों को आमंत्रित करें और हरिनाम का संकीर्तन करें, भागवत कथा करें, ये सबसे उत्तम संस्कार है।
दूसरा प्रश्न है, मुझे अपने बीच में बताया कि एक प्रचारक का कर्तव्य है कि वो कृष्ण भावनामृत को जो है पैकेज करके दे इस तरीके से ताकि लोगों तक जो है वो बाहर पहुंचे भागवतम का संदेश। तो एक ये है, और दूसरी तरफ जो है एक कुछ जगह में प्रभुपाद के बारे में प्रभुपाद कहते हैं क्रैम माई पर्पर्स, तो मेरे पर्पर्स को जो है क्रैम कीजिए और बता दीजिए। तो प्रचार खासतौर पर जब वो प्रचार करने जाता है जहाँ पे प्रवचन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है उसका, तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं से कोई लेक्चर सुन लिया, उसको रट लिया, रट के एज इट इज प्रोड्यूस कर दिया, इज दैट लाइक वो तरीका है कि वो समझ के ऑडियंस को देखते हुए अपने तजुर्बे को साथ मिलाते हुए प्रार्थना, क्या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
उनका प्रश्न आप समझ ही गए कि
प्रभुपाद ने कहा मेरे पर्पट्स को रट लो और दोहराओ एज इट इज भगवदगीता यथारूप, तुम्हारे प्रभुपाद के जो पर्पट है यथारूप हमें दोहरा देने चाहिए। तो इससे अच्छा यही है कि कुछ त्रुटि ना हो जाए तो सीधे प्रभुपाद का रिकॉर्डिंग लेक्चर लेके सुना दो, या पीछे रिकॉर्डिंग लेक्चर चलते रहे मुंह हिलाते रहो ड्रामा में जैसे होता है तो पूरा का पूरा सही रहेगा। ऐसा प्रभुपाद ने ये बोला और साथ ही प्रभुपाद ने ये भी बोला है कि सुनकर उसमें मनन करके और अपनी भाषा में उसको बोलिए, जब तक अपनी भाषा में नहीं बोलेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसके हृदय से जब बात निकलेगी तभी दूसरे के हृदय में प्रवेश करेगी, वाणी से निकलेगी तो कान तक भी नहीं पहुंचेगी, सुने का भी कोई प्रभाव नहीं होगा। ठीक है यस मैम जी,
निरंतर उत्साहपूर्वक भक्ति में अगर हम लगना चाहते हैं तो उसके लिए कोई मूल मंत्र क्या?
निरंतर उत्साहपूर्वक भक्ति में लगने का मूल मंत्र तो एक ही है बस उस मूल मंत्र को बहुत ध्यानपूर्वक करना है, जितना हम ध्यानपूर्वक चैंटिंग करेंगे और भक्तों के संग में रहेंगे हमारा उत्साह बना रहेगा, और जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं सुनते हैं श्रवण सही ढंग से करेंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि संसार के जितने भी संबंध हैं वो हमारे दुख का कारण है, ये संसार के जितने भी सुख हैं वो हमारे दुख का कारण है, सुख नहीं है वास्तव में दुख है। तो जैसे हमारा ज्ञान प्राप्त करेंगे ध्यानपूर्वक सुनेंगे ध्यानपूर्वक जप करेंगे तो धीरे धीरे हम प्रगति करेंगे और उत्साह बना रहेगा।
जो भौतिक परिस्थितियां हैं ये टेम्परेरी हैं, हमें पता है कि ये निकल जाएंगे, लेकिन फिर भी हमारे अध्यात्म स्थिति या इतने गहरे फंसे में या जमे हुए हैं कि फिर भी परिस्थितियां आती हैं तो हम थोड़ा प्रभावित हो ही जाते हैं, इससे बिल्कुल बाहर कैसे निकला जाता है?
भौतिक परिस्थितियों के प्रभाव से
बिल्कुल बाहर कैसे हमारे पर प्रभाव ना पड़े?
सबसे सुरक्षित स्थान है भक्तों का संग, भक्तों के संग में संकीर्तन में निकल जाए, जब हम संकीर्तन में जाते हैं भक्तों के संग में रहते हैं अपना सब दुख भूल जाते हैं। आप अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देख लीजिए, आपके बिजनेस में बुरा मत मानिए लॉस हो गया, किसी ने धोखा दे दिया, घर में जाएंगे अकेले जाएंगे तो शोक में डूबे रहेंगे, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो अकेला रहने दो कमरा बंद कर रह सकते हैं हम, डिप्रेशन में चले जाएं। लेकिन उसी अवस्था में हम यहाँ आ जाएं शाम को 7 बजे और देखें सब नाच रहे हैं तो हम नाचेंगे कृष्ण बलराम से प्रार्थना करेंगे और हम देखेंगे कोई भक्त हमें मिल जाएगा और हमें कुछ ना कुछ ऐसा संदेश देगा कि हमारे जीवन का जो शोक है वो दूर हो जाएगा। तो कुछ भी क्यों ना हो तुरंत हमें भक्तों के संग में आके संकीर्तन में जुड़ जाएंगे तो उस समस्या हम बाहर हो सकते हैं। महाराज वांट सिंह से
हरे कृष्ण। सो इफ ए डिवोटी फील्स दैट दे आर ऑलवेज अनहैप्पी, of course, your point is the nature of the material world, but at the same time, Prabhupada ordered that devotees should be happy.
So, Maharaj bata rahe hain ki agar jin bhakt ko lagta hai ki wo hamesha udaas rehte hain, to unko aisa nahi rehna chahiye, kyunki Prabhupada kehte hain ki ek bhakt ko jo hai hamesha khush rehna chahiye.
He personally gave me a very harsh assessment on this issue.
प्रभुपाद जी ने मुझे जो है इस चीज पे परखा और मुझे बताया।
आई इंक्वायर मॉर्निंग वॉक डिट्रॉइट मिशिगन सेंट्रल यूनाइटेड स्टेट्स, आई इंक्वायर ऑन दिस श्लोक प्रभुभूत प्रसन्नम नासोति नकंति, आई स्पेसिफिकली आस्क्ड हिम ऑन दिस श्लोक रिगार्डिंग डीप मीनिंग ऑफ दैट श्लोक आई आस्क्ड।
मैंने प्रभुपाद जी से डिट्रॉइट मिशिगन में जो प्रभुभूत प्रसन्न छोटी नकांक्षी श्लोक का जो पूर्ण मतलब है वो प्रभुपाद जी से जानने का प्रयास किया, पूछा मॉर्निंग वॉक में डिट्रॉइट मिशिगन।
आई डोंट वांट टू डिस्करेज एनीवन, ऑफ कोर्स प्रभुपाद वाज टॉकिंग टू मी, आई डोंट वांट टू डिस्करेज एनीवन बट इट्स माय ड्यूटी टू टेल यू व्हाट प्रभुपाद सेड।
तो मैं किसी को निरुत्साहित नहीं करना चाहता, प्रभुपाद जी मुझे बता रहे थे तो मैं बताता हूँ कि प्रभुपाद जी ने मुझे क्या कहा।
आई सेड विद दिस वर्स दिस श्लोक सेज Now, so today in the country, no hankering and lamentation, but we see that sometimes devotees are lamenting. So how are we to understand this properly? They are devoting, but they are lamenting also.
So Maharaj ne Prabhupada ji se pucha ki Prabhupada hum kaise samjhe? Bhagwan batate hain ki jo bhakt hai wo shok ya phir hankering lament ye nahi karta. Lekin hum log dekhte hain bhakt ko bhi shok karte hue या भयंकर करते हुए, तो हम इस चीज को कैसे समझें?
Are you ready for Prabhupada's answer?
आप प्रभुपाद जी का जवाब सुनने के लिए तैयार हैं?
You have to please fasten your seat belt, please.
तो आपको अपनी कुर्सी की पेटी बांधनी पड़ेगी.
He said, then not devotee.
ऐसा भक्त जो है, जो शोक करता है वो भक्त नहीं.
I was very shocked. Of course, I was stunned, but that's such a harsh answer.
मैं सुनके जो है स्तंभ रह गया.
But it is not that he was trying to discourage his disciples with that answer. Of course, he was talking to me.
तो ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद जी जो है अपने अनुयायियों को, जो अपने उनके शिष्य थे, उनको निरुत्साहित करना चाहते थे. प्रभुपाद जी बता रहे
हैं. We should understand that his intent was to deliver that devotees must dive deep into the essence of Shravanam Kirtanam. Must dive deep into the essence of, must hear and chant deeply, then there will be no sojiti and kanchati. Diving deep, we have to dive deep. Otherwise, sojiti and kanchati. Lamentation and anger.
तो प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य था ये चीज कहने के पीछे, प्रभुपाद जी चाहते थे कि जो है हम श्रवण कीर्तन के समुद्र में गहरे से गहरा ठहरे, ताकि जो है हम इस प्रभाव से जो है ऊपर आ सकें. शोक और
थैंक यू.
थैंक यू.
हरे कृष्ण. महाराज धन्यवाद
करते हैं. पक्के माधुरी गोसाई महाराज की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, ग्रंथ श्रीमद भागवतम की, हिताई गौर प्रेमानंदे.